ओम शांति। 14 नवंबर
2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आप उसे देख सकेंगे, उस पर साथी बन सकेंगे। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो को जो देख रहे हैं इसमें आपको चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप जुड़ सकते। उस पर आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। तो याद की यात्रा में मस्त रहो। याद की यात्रा माना अपने आप को हर पल हर कदम क्या करना है, हमको सुधारते जाना है, सुधारते जाना है। यदि हम हर पल सुधर रहे हैं, हम चढ़ती कला में हैं, तो हम ऊंच पद पा सकेंगे। यदि हम हर पल अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। यही है रूहानी फांसी। ऐसा होना चाहिए ना बाप, जो सवेरे सवेरे फांसी पर चढ़ाए, उठते ही फांसी पर चढ़ा रहे। ऐसे स्कूल में पढ़ना है आपको जहां फांसी पर चढ़ाया जाए।
जी
फांसी पर चढ़ना है तो भी पढ़ना है। कितने बाप कितने जो है ना दीवाने हो गए हैं, आंखों से, इन दोनों आंखों से अंधे हो गए हैं। इनको कहते हैं तीसरा नेत्र मिल गया है, जिसके कारण इनको वही दिखाई देता है, इन दो आंखों वाला दिखाई ही नहीं देता। फांसी लगने का क्या मतलब होता है यहाँ बाबा, फांसी
भाई
लग,
जी, फांसी फांसी लगेगी जब ही पढ़ पाएंगे, नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे।
फांसी कैसे लगती है यहाँ पर?
अपने को आत्मा समझने से,
फिर फांसी में क्या करना है हमें,
इस
हमें
देह को फांसी लगा देनी है,
किसको?
देह को
देह को फांसी नहीं लगानी।
बाबा बाबा का तरह हमेशा देखना है।
हाँ, जैसे जब फांसी लगाते लगाते ना कोई गले में तो लटकता है, तो उसका मुंडी जो है ना, दो अवस्थाएं होती हैं, या तो मुंडी एकदम आगे लटक जाएगी या मुंडी ऊपर हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर। तो ये ऊपर वाली मुंडी क्या होता है कि गर्दन जो है ना आगे की तरफ गिरी हुई होती है कईयों की, हमने देखा तो कईयों की क्या होती है, गर्दन ऊपर की तरफ चली जाती है। मतलब ये जो फंदा बहुत ज्यादा टाइट हो और वो हमारे इस गिट्टे से जो गर्दन में होता है इसके नीचे यदि गला घुट गया और वो फिर आगे ही लटक जाएगा, और यदि वो फंदा थोड़ा सा भी ढीला है और तो वो इस गिट्टे से ऊपर आ गया तो इस गर्दन को ऊपर उठा देता है। ठीक है, तो बाबा कहते तुम्हारी गर्दन जो है ना, सिर जो है ना, मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये है यहाँ की रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे, बुद्धि जो है ना कहाँ लटकी हुई हो, ऊपर, नीचे नहीं देखना है आपने। परंतु ऊपर परम धाम में हमारी बुद्धि क्या होनी चाहिए, लटकी हुई होनी चाहिए। हमारा ध्यान हर वक्त अपने घर की तरफ हो, परम पिता परमात्मा की तरफ हो, और कहीं भी हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। प्रश्न, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी उनकी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती,
पुरानी दुनिया को देखेंगे,
वे छोटी छोटी बातों में रंज नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझ जाते हैं, बच्चे समझते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं जिसको ये बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते, वे तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो घर थोड़े ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो, अंदर में है, हमको ऊंचते ऊंच बाप आकर ऊंचते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है, अब हमको घर जाना है। ओम शांति। मुरली चल रही है भाई जी अभी ना, अब हमको घर जाना है। ऊंचते ऊंच बाबा हमको फिर से ऊंच पद प्राप्त कराते, ऊंचते ऊंच बाबा क्या करते हैं, हमको फिर ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीचे है, रावण राज्य में सब नीचे, वे ऊंच ये नीच, वो है ऊंच पद सतयुग का और ये क्या है नीच पद। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं, ऊंच वाले को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। ऊंचते ऊंच किसे कहा जाता है, एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वो है परम धाम में रहने वाला शिव बाबा, जिसकी तरफ हमारी बुद्धि जाती है वो परम धाम में रहने वाला है। बाकी हमने अपने सिर को कोई ऐसे ऊपर लटका के नहीं रखना, हमने आत्मा की बुद्धि को ऊपर लटका के रखना। हमारी फांसी है आत्मा को, हमारी फांसी इस देह को नहीं है, इस शरीर को नहीं है जो हम अपने मुख को ऊपर करें। हमने बुद्धि को ऊपर लगाना है। ऊपर लगाने का मतलब है परमात्मा की डायरेक्शन पर चलाना है। ये कोई भी नहीं समझते, दुनिया वाले इन बातों को नहीं समझते। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है, हम आत्माएं भी वहां, वहां मीन्स परम था, हम आत्माएं भी उसी घर की रहने वाली हैं जहां से हम आत्माएं यहां आई हैं, जहां से हम आत्माओं का पिता परमात्मा पढ़ा रहा, पढ़ाने के लिए आया है, जहां से हम आत्माओं का पिता परम आत्मा पढ़ाने के लिए आया है। हम भी वहां के रहने वाले हैं। ये कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं, ऊंचते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे, याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है, ये ज्ञान जो तुम्हें सिखलाया जाता है, वो भूलने की नहीं है, वो ज्ञान भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं। हम कितना ऊंचते ऊंच जाते, हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये स्थूल वतन। पांच तत्व यहां है, सूक्ष्म वतन और मूल वतन में ये पांचों तत्व नहीं होते। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में पांचों तत्व नहीं होते। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है।
भाई जी,
हाँ जी,
मूल वतन और सूक्ष्म वतन में क्या है तब? पांचों तत्व तो नहीं है तो?
जो हमारा मूल वतन है वो है ब्रह्म तत्व, छठा महातत्व जिसे कहा जाता है। जैसे हम आत्माएं हैं, हम आत्माएं उसी तत्व से, ब्रह्मा तत्व से, परमात्मा भी उसी ब्रह्मा तत्व से यहां आया है। और जो सूक्ष्म वतन है वहां पर कोई चीज नहीं, वो तो केवल हमारे संकल्प की दुनिया है। जैसे आपने कोई संकल्प किया और आपने कोई सपना देखा और वो फिर जब उठेंगे तो कुछ भी नहीं। संकल्प की दुनिया, आपने बैठकर कुछ भी सोच लिया, वो आएंगे तो उनको ऐसे बात करूंगी, ऐसे बात करूंगी, ऐसे बात करूंगी, ऐसे बात करूंगी, आपको सब कुछ आपके दिमाग में दिखाई दे रहा है परंतु है नहीं। यदि इस समय भी आपके मम्मी पापा जीवित हैं, आपके मम्मी पापा
नहीं, मम्मी नहीं है, नहीं
भाई जी, मतलब भाई है तो कोई बात नहीं, नहीं है सोचो कि नहीं है, आप उनको याद करो तो उनकी आपको याद आएगी ना, आपको उनकी शक्ल भी दिखाई देगी, सब कुछ दिखाई देगा परंतु होंगे नहीं। अब यदि वो सपने में भी आए, आपने उनके मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, जिनके जो भी दादा दादी नाना नानी कोई भी हो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, आपने उनको सपने में देखा परंतु सपने में कहीं है तो नहीं ना, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, उन्होंने कहीं और जाकर के जन्म ले लिया है, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म लोक में कुछ नहीं है, वहां सिर्फ एक संकल्प की दुनिया है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर, सूक्ष्म आकार में आकर साक्षात्कार कराते हैं समझो, या दिखाते हैं जो सीन वो दिखाना चाहते हैं। जैसे दादी गुलजार उस समय जब ब्रह्मा बाबा नीचे हैं, उस समय भी ब्रह्मा बाबा ऊपर मिलते थे, ऊपर ब्रह्मा बाबा के आकार में शिव बाबा आकर, ब्रह्मा बाबा आकर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के आकार में मिलते और दादी को वहां कुछ ना कुछ संदेश देते, या वो लिखा हुआ कहीं सामने दिखाई देता तो उसको पढ़ के आ जाती, या फिर कोई चित्र दिखाई देता, कोई फिल्म दिखाई देता, जैसे सपने की तरह ऐसे उनको कुछ दिखाई देता, वो देखकर आती और आकर बताती कि ये मैंने देखा। फिर बाबा या सभी लोग इस अंदाज लगाते कि वास्तव में क्या कहना चाहते हैं शिव बाबा। तो धीरे धीरे दादी को समझ में आने लगी बातें, क्योंकि उस टाइम तो 8 साल 9 साल की बच्ची थी, ये देख के आई, ये देख के आई, ये देख के आई। उसके बाद जो है समझ में आने लगा, बाबा की बातें समझ में आने लगी, मतलब लिप्स रीडिंग को समझने लगी कि ब्रह्मा बाबा के, क्योंकि वहां पर भी आकार तो ब्रह्मा बाबा का है, तो आकार से तो वही ब्रह्मा बाबा से लेना है, परंतु उस ब्रह्मा बाबा के आकार में शिव बाबा अपना वंडरफुल पार्ट बजा रहे। कहते हैं कि बच्चे तुम्हें आने में भी कोई सेकंड की जरूरत नहीं, आप वहां आ सकते हैं। तो इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो बाबा के पास जाना, तो सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं, बाबा ने कई मूल्यों में कहा कि तुम बच्चे ऊपर आते हो और सूबी रस पीकर जाते हो, तो वहां ना तो सूबी के पेड़ हैं, ना ही कोई सूबी का रस निकालने की कोई मशीन, ये कुछ भी नहीं है, केवल आपको लगता है कि हमने सूबी रस पिया। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। दुनिया वाले क्या समझते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़े, एक शास्त्र खत्म हो दूसरा निकालेंगे, दूसरा खत्म हो तीसरा निकालेंगे। मैं जब छोटा था मैंने आपको बताया कि मैं घर आता एक किताब खत्म होती दूसरी किताब पहले तैयार होती, मैं सोचता जान छूट जाएगी अब खेलने जाऊंगा, परंतु खेलने नहीं दिया। मतलब मुझे सिर्फ यही था कि एक शास्त्र खत्म हुआ तो दूसरा शास्त्र पढ़ना है, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा पढ़ना, इसी में पढ़ते पढ़ते मंदिर बन गया और हम पुजारी बन गए, हो गया काम। स्कूल में भी हम जाते थे तो लंबी लंबी चोटी होती थी, लंबे लंबे माथे पर तिलक होते थे, बहुत अच्छा बच्चा बन के जाते। तो कितना पैसा कमाते हैं शास्त्र पढ़ने में, कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं, इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंचते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते। कह देते हैं ये सब कल्पना है, ऐसे के लिए समझना है, ये हमारे कुल का नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है, जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीचे दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते, उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भी बल स्वर्ग में जाते नहीं, फिर भी नाम तो लेते हैं। हैविंग पैराडाइज था मुसलमान लोग भी बहिष्ट कहते हैं, परंतु ये उनको पता नहीं है कि वहां कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है, ऊंचते ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं, ये ड्रामा कैसे वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वे कल्पना कह देते, जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वे कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं ये पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है और पुरानी दुनिया सो नई बनती है। बाबा आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बनाता हूं। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो समझते हैं, जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती हैं, वे सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ना कोई तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। अब इस नीच दुनिया का अंत आना है, यह है पुरानी दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। यह है पुरानी दुनिया, मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़े कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं, नीचे के आगे सिर झुकाना, नीच के आगे सिर झुकाना ये काफिर बना। हमेशा सिर झुकाते हैं नीचे की कोई आगे, नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ा होता है। जो बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, उनके आगे सिर झुकाया जाता है। जो नीच है उनके आगे तो कोई सिर जाके नहीं झुकाएंगे ना, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता, भक्त लोग ही ऐसा करते हैं, बाप तो ऐसा नहीं कहते। सिर झुकाकर चलो, नहीं ये तो पढ़ाई है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। ये तो पढ़ाई है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में आए तो उतर जाए, घर में नशा रहना चाहिए। यहां तो तुम बच्चे जानते हो, बाशेव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तो कहते हैं कि मैं थोड़े ही ज्ञान का सागर हूं। कौन कहता है मैं थोड़े ही ज्ञान का सागर हूं, मतलब मैं ज्ञान का सागर नहीं हूं, कौन कहेगा? शिव बाबा कहेगा,
ब्रह्मा बाबा भाजी।
अच्छा, ब्रह्मा बाबा कहेगा
जी
कि मैं ज्ञान का सागर थोड़े हूं, ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है। ये बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकली है ना, सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है, बहुत बहुत खड़े सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं, नदियां तो बाहर भी बहुत हैं, पतित पावनी गंगा ये तो सिर्फ बाहर में। कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार ही नहीं, फिर तो जाओ पतित पावनी नदी में डुबकी लगाओ और बस तुम्हारे जन्नत में प्रवेश हो जाएगा। नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं, कहां तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं बात मत पूछो, उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है ये सब नीचे उतरने के रास्ते। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं, अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंख ही खुल गई। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं, तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा बताओ? आज तक तो किसी ने पूछा ही नहीं भाई। तीसरी आंख आत्मा का है और आत्मा जो है ना एक छोटी सी बिंदी है, उसको हम देख नहीं सकते, उसके अंदर आंख कैसे होगी
भाई? वो तो बुद्धि का नेत्र है ना।
है जी
भाई, समझ
बुद्धि का नेत्र है ना।
बुद्धि बुद्धि कितनी बड़ी है?
समझना है, देखना नहीं है।
देखना नहीं है। बुद्धि का बुद्धि कितनी बड़ी है हमारी?
हमारा भी तीसरा नेत्र है
भाई जी। विशाल बुद्धि, बाबा बोलते ना विशाल बुद्धि बनो। समझ
कितनी बड़ी, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या साइज होगा बुद्धि का
भाई जी? अनलिमिटेड, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। आत्मा बेहद की है ना, तो बुद्धि भी बेहद की होगी।
कितना लंबा, कितनी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी बुद्धि की? मैं ये
पूछ रहा हूं भाई, जब नहीं है जैसा
जीरो साइज है भाई जी, जीरो साइज,
जीरो साइज है
भाई जी। जैसे आत्मा है उसकी आंख भी वैसी होगी, अब देख लो।
बहन जी बता रही है बुद्धि का साइज बड़ा होता है और आप बता रहे हो बुद्धि का साइज छोटा होता है, किसकी मानो
भाई जी? समाज
ही छोटा।
हाँ जी,
छोटा जीरो साइज होते हैं,
बुद्धि का साइज जीरो होता है। उसमें नेत्र कैसे होगा? बाबा पूछ रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे हो। ये सब समझने की बातें, क्योंकि बुद्धि जो है, ये जो हमारे खोपड़ी है, ये ब्रेन है, इसको बुद्धि नहीं कहते। जो हमारा सिर है, इसको बुद्धि नहीं कहते। आत्मा में बुद्धि होती है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है तो वो बुद्धि कितनी सूक्ष्म होगी, आपको समझ में आए।
भाई जी, अगर बुद्धि अगर आत्मा में होता है तो ब्रेन का काम क्या है? सब कहते हैं ना इनका ब्रेन बहुत पावरफुल है, तो ब्रेन का काम क्या होता है?
क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानते। ब्रेन है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, जिसके अंदर सारी फाइलें रिकॉर्ड करता है ऑपरेटर। ब्रेन जो है ना, वो हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर है, उसको चलाने वाली आत्मा है। आप जो भी आत्मा है वो उसको चलाती है, ठीक है कि नहीं? ये शरीर तो आत्मा में तो केवल और केवल सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस है, परंतु हार्डवेयर जो है वो हमारा कंप्यूटर।
भाई जी, अगर ब्रेन में कुछ गड़बड़ है तब भी तो बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं करेगा ना।
ब्रेन में यदि गड़बड़ है तो बुद्धि काम नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं? बुद्धि क्या करे बेचारी? बुद्धि तो वही कर सकती है ना जो ब्रेन में हो। ये देखे, आप बुद्धि मैं दिखाता हूं। ये जो है ना, बाबा ने हर चित्र को बनवाया है, ये आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर है, ठीक है? इस कंप्यूटर के अंदर ऊपर तो स्क्रीन रखी है, पुराने जमाने वाली, ठीक है? ये जो स्क्रीन है ये तो सिर्फ दिखाती है, परंतु ये जो नीचे बक्सा रखा हुआ है ये है ब्रेन, है नहीं? ये ब्रेन, इसके अंदर जो फाइल आती है वो यहाँ हमें दिखाई देती है। ये दो स्पीकर रखे हुए, तो यहाँ पर जो भी मैसेज आता है वो यहाँ पर दिखाई देता है ब्रेन को, और वहां जो है ना ये ऑपरेटर बैठा है, ये जो है जहां जिस फाइल को रखना है वो इसके अंदर रखता है, इस नीचे वाले बक्से के अंदर। क्लियर हुआ? ब्रेन जो है वो एक हार्ड डिस्क है, उसमें जितनी भी बातें हैं वहां रखी जाती है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से साफ कर रहे, क्या चेक कर रहे? ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हो, तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो, ना परमात्मा को आप जानते थे ना परमात्मा का कहना मानते थे, अब परमात्मा को जान भी गए हो और परमात्मा का कहना भी मानते हो। आगे तुम रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे, कैसे सृष्टि को रचा गया, फिर क्या हुआ, केवल अब परमात्मा आकर वो राज खोल रहे।
भाई जी एक बात पूछूं? भाई जी अगर किसी का ब्रेन ठीक नहीं है, मतलब कुछ कमजोर है, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते है ना कि उसका बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो सबको होगा ना।
हाँ बुद्धि तो आत्मा के अंदर है ना
जी।
बुद्धि तो आत्मा से बाहर नहीं है, बाहर तो है ब्रेन दिमाग। दिमाग हमारा शरीर का है, वो नाशवान है। अब ये दिमाग के अंदर यदि ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए, ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन के अंदर कोई नस ब्लॉक हो जाए, ये सिर दर्द क्या होता है, हमारे ब्रेन की नसों में ब्लड बहुत तेजी से जाता है, वो गर्म हो जाता है, इसलिए माथा गर्म हो जाता है। जिसको भी सिर दर्द होगा उसके माथे पर हाथ लगाएंगे, गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि ब्रेन के अंदर बहुत तेजी से ब्लड जाना चाहता है परंतु उसमें से गुजरने की जगह नहीं मिल रही है, इसलिए ब्रेन दर्द हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, डिस्प्रिन की गोली खाते हैं, वो खून को पतला कर देता है, फिर ब्रेन से वो सारी सब जगह जाना शुरू कर देता है। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। ये नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे, हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ तो सब भूलना है, ये सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप को पहचान गए या देते हो जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके गए लग जाते हैं। जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैंप भी बनाते हैं, बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की भी स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑल माइटी बाबा की गवर्नमेंट है, तुम्हारा ये कोट ऑफ आर्म्स है, और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं। एक बाप को ही याद करो, सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी कुंभ मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए, सारे मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो ये है, बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वो सभी एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है, यहाँ आते हो समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं, कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो, बाहर निकलते हैं वो नशा खलास हो जाता है। नंबर वार तो है ना, बाबा समझाते हैं ये है पतित दुनिया, बुलाते भी है हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं, इसलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़े ही पाप लगता है, माँ तो शरीर को धोया जाता है ना, बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं माँ मेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है, भारत स्वर्ग था अभी नरक है, तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम संगम पर हो, तुम बच्चे तो अभी कहां हो, संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं, पांच मंजिल से गिर पड़ते हैं। जो काम विकार में गया वो पांचवी मंजिल से गिरता है, पांचवी मंजिल काम विकार, चौथी मंजिल क्रोध, और पांचवी तीसरी मंजिल आ जाता है अहंकार, फिर आ जाता है लोभ, फिर आ जाता है मोह। पांच मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर सौ गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि बाप कितना ऊंच था, अब कितना नीच है, अब तुम कितना समझदार बनते हो, मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यहां कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है, तुमको ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी है निराकार, तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहां पार्ट बजाने आई हो। ये ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा में कहा जाता है, इस नाटक में भी मैं तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते, बीमार पड़ते तो क्या होते हैं, बाबा को छोड़कर अपना दुनिया में चले जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, बाबा आया हुआ है, ये सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए, बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, कंपेनियनशिप के लिए क्या करते हैं, शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर बिल करते, कुछ उनको कुछ चैरिटी को, कुछ धार्मिक कामों में लगा देते हैं, कुछ उन लोगों को दे देते हैं। विकार की बात नहीं रहती, आशिक माशूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशूक को याद करते हो, सब आशिकों का एक माशूक है, सभी एक को ही याद करते हैं, वह कितना शोभनीक है। आत्मा गोरी है ना, वो है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको ये सांवे सांवरे से गोरा बनाते हैं, ये तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते। यहां बहुत हैं जो पता नहीं किस किस ख्याल में बैठे रहते। स्कूल में ऐसे होते हैं, होता है बैठे बैठे कहां बुद्धि बाइस्कोप तरफ। बैठे स्कूल में है, हम भी स्कूल में जाते थे तो कोई ना कोई बच्चा फिल्म देख के आता था, बस टीचर जरा बाहर निकले हम सारे इकट्ठे हो जाए, वो हमें फिल्म की कहानी सुना। हमें कुछ समझ में आता था या नहीं आता था मुझे याद नहीं आ रहा, पर तो हम छोटे बच्चे थे और स्कूल में मतलब कोई बच्चा फिल्म देख के आता था तो अब आज तो उसके बाद आज तो खैर सीरियल वगैरह बहुत सारे हैं, आज तो बुद्धि हरे की नेटफ्लिक्स पता नहीं क्या क्या दुनिया में चल पड़ा है और वहां वहां बुद्धि उनकी आज ये आ रही है आज वो आ रही है। बैठे कॉलेज में है बैठे स्कूल में है परंतु उनकी बुद्धि में वो चलता रहता है। सत्संग में भी ऐसे होता है, यहां भी ऐसे है, बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को कराए। बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहां लग जाए, परंतु छोटे बच्चे हैं, बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, ये तो बहुतों का कल्याण करेंगी, होशियार हैं तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए, 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना, नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया। ये माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी, लौकिक का और पारलौकिक बाप का नाम बाला करके दिखाएंगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है, जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वे सुनने सुनाने की दरकार ही नहीं। पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहां भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबर वार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रत्न है, जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बन गया बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लाटरी व वरदान मिल ही जाती है। कौन सी लाटरी निकल जाती है? पूजनीय बनने की, महान व पूजनीय बनने की महान लॉटरी जो है ना वह वरदान मिल जाता है। स्लोगन, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़ दे, अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ। तो जा सकते हो युद्ध स्थल में, युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे। शरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम नहीं, ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति।